हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहां ना ठहर पाता है।
शांति। प्रश्न है, कई बच्चे निश्चय बुद्धि 4-5 वर्ष चलते हैं और चलते चलते चले जाते हैं, और ये बावन का यह लहर क्यों, इस लहर को समाप्त कैसे करें, ये प्रश्न है। तो लहर क्यों और कैसे समाप्त करें, तो आप लोग कुछ बताएंगे, फिर जो बाबा ने उत्तर दिए उसके बारे में फिर सोचेंगे। और बाबा कह रहा निश्चय बुद्धि बच्चे, बाबा ये नहीं कह रहा कि संशय बुद्धि चले जाते हैं, निश्चय बुद्धि जाते हैं, मतलब जिनको नशा होता है सारी पूरा निश्चय होता है, जिनने समझ लिया कि ये भगवान है हमें पढ़ाने वाला परमात्मा है, वो निश्चय बुद्धि बच्चों की बात कर रहा बाबा। कभी कभी संग दोष में आ जाते हैं, मतलब कंपनी अच्छी नहीं पकड़ता, इधर आके दूसरा संग पकड़ लेता है पुरुषार्थहीन आत्माओं का। और पालना में कमी पड़ जाती है, और एक दूसरे को देखते हैं, बुराइयों कमियों को देखने लगते हैं। और निश्चय बुद्धि बच्चे चले जाते हैं क्यों, संसार की इच्छाएं खींचती हैं, और
उनका ड्रामा पार्ट
है। आज बाबा ने कहा मिल्कियत के मालिक हो, लिटरेचर वाला मिल्कियत का मालिक है। कमजोर संस्कार हैं वो छिपे रहते हैं, छिपाते रहते हैं, वो अंदर अंदर युद्ध करते रहते हैं। और संगठन में टकराव होता है, टकराते रहते हैं, मिला के नहीं चलते हैं। और
मैं
अहंकार आ जाता है, ज्ञान का भी अहंकार आ जाता है, ज्ञानी उक सेवा का अहंकार आ जाता है, नाम मान सान आ जाता है, विशेषताओं का आ जाता है अहंकार, और हम इतने पहुंचे हुए हैं अहम आ जाता है, पुराने का भी अहंकार आ जाता है, हमको ज्यादा ज्ञान है समझ है, तुम तो अभी आए चार दिन के। या ये कहीं कहीं भूल जाते हैं कि हमको पढ़ाने वाला कौन है, साधारण तन में आया तो उसको भी साधारण तो हम समझ लेते हैं, पढ़ाई का वैल्यू जो बाबा कहते हैं ना, कल कहा था कि एक एक शब्द कितने का है, मिलियन का है, बिलियन का है, एक एक शब्द मूल्य का, उसकी गहराई नहीं ऊपर ऊपर समझते हैं, क्योंकि वो सैंपल, पहले जब बाबा नए ज्ञान में आते हैं तो बाबा टेस्ट करने के लिए सैंपल दे देता है, फिर फ्री में बिना मेहनत के ऐसा ही दे देता है, जैसे दुकान में जाता है व्यक्ति की बहुत क्वांटिटी में उसको कुछ लेना होता है तो वो पहले फ्री में देता है, लो टेस्ट करके देखो, और जब रस आ गया उसको तो फिर तो पैसे लेगा वो। ऐसे पुरुषार्थ में चलते चलते फिर हमको मेहनत लगने लगती है, और मेहनत लगने लगती है तो जिसके कारण आसानी से प्राप्तियां नहीं होती। तो एक कहानी है, ऐसे ये स्टोरी है कि एक लैला एक बड़े शॉपिंग मॉल के बाहर खड़ी होती है और अपने मजनू को फोन लगाती है, तो मजनू जो है वो भागा भागा आता है सब काम छोड़ के, बोले बहुत इमरजेंसी जल्दी आ जाओ। तो वो मजनू आता है भागते हुए, तो लैला एक शोरूम होता है जो शोकेस होता है, उधर एक पर्स रखा होता है, वो बोला ये खरीदना है, मजनू देखता बोले तो मैं तो बहुत इमरजेंसी में जल्दी जल्दी आया हूँ, पर्स नहीं लाया हूँ। तो बोले नहीं खरीदना है, अगर नहीं खरीद के दिया तो आज से अपना जो रिलेशन है खत्म। और इतना बोल के वो चली जाती है, दोबारा कोई कांटेक्ट नहीं होता है, वो भी चला जाता है। और बाद में कई वर्ष बीतने के बाद फिर से वही व्यक्ति उसी मॉल के सामने और वही लैला वहीं टकराते हैं आपस में। मजनू बस से उतरता है तो लैला देखती है कि आज भी ये उसी हालत में है जिस हालत में पहले था, अच्छा हुआ बच गई मैं, नहीं इसके साथ कहाँ जीवन चलता, लुट जाते हम तो। लैला मिलती है और जो अपनी मर्जी से उसके पास जाती है नजदीक टोंट मारने के लिए, देखो आज भी तुम वही हो ना, हमने तो इसी मॉल का एक कर्मचारी मैनेजर है उसके साथ शादी कर ली, उसकी सैलरी भी 1.5-2 लाख रुपए है, बोनस है प्लस इंसेंटिव है प्लस, और हमको घूमने मिलता है बाहर ट्रिप में जाने के लिए। तो ऐसे ऐसे बताने लगे, बोले अभी मैं बुलाती हूँ उसको। तो उसने अपने उसको बुलाया, हस्बैंड को जिसके साथ शादी की उसने, तो बुलाया तो वो बाहर आया और भमचक रह गया उसको देख के, जो उसका पुराना जिसको उसने मजनू बनाया था, कि ये तो मेरा बॉस है और ऐसे ये 1000 मॉल का मालिक है, ये साधारण व्यक्ति इसको नहीं समझो आप, ये तो हमारा बॉस है, सैलरी यही देता है हमको, ट्रिप देता है सारी चीजें। और फिर क्या होता है कि 5-6 मर्सिडीज आ जाती हैं उसके पीछे, क्योंकि वो अभी अभी आया होता है बाहर से, उसके पीए आते हैं, असिस्टेंट आते हैं, बॉडीगार्ड आते हैं, सारे लोग आ जाते हैं, दिखने में वो साधारण होता है। लेकिन तब लैला को महसूस होता है कि मैंने एक तुच्छी से पर्स के पीछे एक अरबपति और कितने महान व्यक्ति को छोड़ दिया। तब उसको लैला को रियलाइज होता है और उसके आंसू जब निकलते हैं वो खून के आंसू होते हैं। तो एक कहानी से ये है कि हम भी कहीं ना कहीं भगवान को हाथ पकड़ लिया, जान लिया, सब छोटी छोटी इच्छाएं मन में रह जाती हैं, बाबा ने ये नहीं किया छोड़ दे, बाबा हम चल रहे इतने वर्षों से कुछ प्राप्ति का अनुभव नहीं, अरे वो कौन है, वो कौन है वो जो तुम्हें विश्व की बादशाही देने आया उससे तुम पर्स मांग रहे हो, पर्स मांग रहे हो उससे तुम योग लगा रहे हो मोबाइल के लिए, सेंटर के लिए, जो बन जाए वो हो जाए, छोटी मोटी चीजों के लिए हम उसके लिए आए हैं क्या दर पे, वो विश्व का मालिक बनाने आया, वो छोटा मोटा व्यक्ति थोड़ी है, ये तो दुनिया की कहानी है और ये सफल व्यक्ति की कहानी है, कोई 100 एक बुक है उसमें एक टॉप में जो मिलियनर है उसकी कहानी है, उसकी लव स्टोरी है। लेकिन राइटर जो जिस राइटर ने स्टोरी को लिखा है उसको राइटर को उसका नाम जिक्र करने की दरकार नहीं थी, इसलिए वो गुप्त रह गया। रियल स्टोरी है, ये दुनिया की बात है। और हम बन गए बाबा के बच्चे और देखो अब छोटी छोटी चीजों में, इच्छाओं में और सारी चीजों में फंस के, तो उसको फिर हम हमारे साथ भी ऐसा ही ना हो जाए, हमारे भी खून के आंसू लास्ट में ना ले जाए। तो वही यही समय है, बहुत जो ये समय मिला है हमको ये स्वोन्नति के लिए मिला है। तो बाबा ने तीन इसमें कारण बताए हैं मुख्य, जो कि जो निश्चय बुद्धि आत्माएं गई, क्यों गई, तो उसके तीन कारण और तीन निवारण इसी प्रश्न उत्तर में देखेंगे जो बहुत गहरे हैं। तो पहला कारण जो बताया इसमें कि बिजी सेवा और स्व के बैलेंस में बहुत व्यस्तता, दोनों का बैलेंस नहीं रख पाते हैं। कब हमें सेवा करनी है, कब हमें अपने स्वपुरुषार्थ का चेकिंग वो भी करना है, इसमें बैलेंस नहीं होता। योग का समय है पता चला उस समय सेवा कर रहे हैं, या स्वयं की उन्नति का ख्याल ही नहीं है कि आए क्या करने थे और करण क्या लगे, कहते हैं ना आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास, तो हो जाता है कहीं ना कहीं दुनिया की सारी चीजें छोड़ के आ गए, लेकिन यही फिर दुनिया की चीजें पकड़ ली आके। पहले तो सोचा कि बहुत भगवान मिल गया हमको करोड़पति, और फिर देखो पर्स में नियत चली जाने लगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो होना शुरू हो जाती हैं इस ज्ञान मार्ग में। और उस क्या है कि हमने कहीं ना कहीं ये समझा है कि साधारण सबको साधारण आत्माएं समझ लिया, इधर जो दिख रही हैं वो साधारण भेष में देवी कुल की आत्माएं, जो भी हमारे इर्द गिर्द हैं वो महान आत्माएं हैं, उनका कहीं ना कहीं हमने वैल्यू नहीं रखा, उनको ऐसे ही समझ लिया वो साधारण कपड़े में, तो इसका मतलब ये नहीं। तो बाबा कहता है तुम बेगमपुर के बादशाह हो, बेफिक्र बादशाह हो, बिन कौड़ी बादशाह हो, और कभी भी जो जो भी यहां पर रईस व्यक्ति या कहो तो रॉयल व्यक्ति को देखोगे वो पर्स में कभी पैसे नहीं रखता है, पर्स में ना एटीएम ना कुछ होता है उसके पास, उसके पीए सारा हैंडल करते हैं, वो कुछ नहीं करता, वो बिल्कुल बर्डन नहीं लेता, हल्का रहता है एकदम फ्लाइट मोड में। हाँ, इसलिए इधर पे भी देखो हम बेगमपुर के वास्ता हैं, देखो कितनी खुशी की बात है, हमें अपने बारे में भी सोचना नहीं पड़ता है। आप डाइनिंग जाएंगे भोजन ऑटोमेटिक मिलेगा आपको, सेवा सिर्फ आपको सेवा करनी है, अपना नियमित जो है रूटीन वो करना है, वो भी साक्षी भाव से, उसमें भी मालिकपन नहीं है, निमित्त है हम, इंस्ट्रूमेंट है हम, कराने वाला बाबा है। हमारी क्या हिम्मत थी, हम क्या थे दुनिया में, पड़े थे एक छोटे से गांव के छोटे से कोने में, और बाबा देखो कहां से कहां पहुंचाते। अगर अपनी नैया उसके हवाले कर देते, पर्स के पीछे अगर ना भागते और संतुष्ट रहते जैसा है, तो उसके मालिक होते, वैसे पर्स की दुकान के मालिक होते। और क्या उस कहानी में एक और जिक्र ये है कि जब वो छोड़ के आया था तो उसकी कोई 21 करोड़ रुपए की डील छोड़ के आया था उसके पीछे, इतना भाग के आया वो। ऐसे ही भगवान है, वो 5000 वर्ष से हमारा इंतजार करते हुए हमारे लिए आया, और हम अमृत वेले सोए पड़े हैं, मूल्य क्लास ना मूल्य पढ़ रहे ना कुछ कर रहे, भगवान को पा लिया बस इसी का नशा है। बाबा ने आज कहा ना सुख खुद में नहीं है, शांति खुद में नहीं है, तो दुनिया वालों को खाक दोगे, तो खुद तो लूटे हैं सनम और साथ में लूट भी रहे दूसरों को, क्योंकि तुम जिम्मेवार आत्मा हो, जिम्मेवार हो, और हम किसके, भगवान की पालना में पल रहे, तो वो चीज हमको भरनी है, और जिसका अकाउंट ही खाली है वो दूसरे को क्या दे पाएगा। लास्ट समय में हर एक आत्मा आपसे लेने आएगी, और लास्ट का लास्ट समय तो अब आ ही गया है, दिख रहे हैं नजारे। और बाबा ने किसी अव्यक्त वाणी में बहुत गहरी बात बोली कि लास्ट समय जब बच्चे आएगा, लास्ट समय जब आएगा तब ब्राह्मणों में आलस अलवेलापन बढ़ जाएगा, और अचानक बिल्कुल नजारे इतने विनाशकारी हो जाएंगे कि उस समय तुम पुरुषार्थ नहीं कर पाओगे। और देखा जाए तो इतने सारे कमेंट लोग करते हैं कि इसका क्लास उसका क्लास, बैसाखी के सहारे कभी भी रेस नहीं जीती जा सकती। एक सपोर्ट होता है किसी का, ज्ञान चिंतन एक सपोर्ट होता है, संगठन एक सपोर्ट करता है, लेकिन संगठन, एक व्यक्ति एक रास्ते से गुजर रहा था तो किसी से पूछा कि भाई ये रास्ता कहाँ जाता है, तो उस व्यक्ति ने बोला रास्ता कहीं नहीं जाएगा, तो इनको जाना पड़ेगा। कोई व्यक्ति पुरुषार्थ में अंग जा रहा है तो उसके संग अंग रहने से कुछ नहीं होगा, अपना करना पड़ेगा आपको, अपने अपने से चलना पड़ेगा। और ये मार्ग कहते हैं ना एकांगी पगडंडी, अपनी गोड़ तो नशा चढ़े, अपना चिंतन कर तो आगे बढ़, क्योंकि परिस्थिति सबकी पर्सनल है और जब परिस्थिति आती है तो कोई दूसरा हाथ नहीं लगाता है सिवाय भगवान के, और कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आएगा आपको। अगर भगवान से कनेक्शन नहीं है, किसी आत्मा से रखा है, चाहे कितनी भी पुरुषार्थी आत्मा, अगर उसके भरोसे चल रहे हो, धोखा जरूर मिलेगा, और ऐसा धोखा मिलेगा कि संभलना मुश्किल हो जाएगा। किसी साल्वेशन के आधार पर अगर पुरुषार्थ है, कोई हमें पूछ रहा है, कोई कुछ कर रहा है तो हम सेवा करें, कोई हमें आगे बढ़ाए तो हम आगे बढ़े, नहीं। ये मार्ग अपने अकेले का है। बाबा ने कल कहा गुप्त पुरुषार्थी बच्चे, और वो सदा सफल रहेंगे, खुशी में नाचते रहेंगे। जो वास्तव में दिल से करेगा, बाबा ने कहा, दिल तक पहुंचेगा, और वो उसको कोई विघ्न बाधा आएंगे। नीचे नंबर चल रहा होगा ना, तो कहाँ थे? विघ्न परिस्थितियां आएंगी, उनसे खुद ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध ही वीर का प्रमाण है। जो लड़ा ही नहीं तो वो वीर कैसे होगा? जो लड़ा ही नहीं तो वो वीर कैसे प्रमाणित हो? कहते भी ना कि परमवीर चक्र किसको मिलता है, जो युद्ध में शहीद हो जाता है। तो ये भी हमारा युद्ध क्षेत्र है, इसमें लड़ते लड़ते शहीद भी हो जाए तो प्राप्ति होगी, बाबा ने कहा है। और जो भाग गया पहले ही, लड़ने से पहले भाग गया, तो वो भगोड़ा के, और कायर भी कहते हैं, जो युद्ध में पीठ दिखा के, शत्रु पीठ दिखा के भागे, वो कायर कहलाता है। तो ऐसे ही हमको पीठ नहीं दिखानी है, ईंट से ईंट बजानी है पुरुषार्थ में, चाहे लाख विघ्न आ जाए, क्योंकि परिस्थितियां वो आती जरूर हैं, वो आपको आगे बढ़ा रहे। और परिस्थिति जैसे ही आप पार करोगे, वो व्यक्ति नहीं रहोगे जो पीछे थे, कुछ ना कुछ ऐसा निखार आ जाएगा आपके जीवन में जो हमें बदलाव। और कहीं जो पहला है वो याद और स्वयं की सेवा और बिजी, बैलेंस नहीं है उन्हें। दूसरा है, दूसरा कारण जो बाबा ने बताया कि कमजोरी, कोई ऐसा संस्कार जो कमजोर होता है जिसको छुपाते रहते हैं, बाबा से निमित्त आत्मा से नहीं बताते हैं, जिसके कारण अंदर ही अंदर युद्ध चलता रहता है। और युद्ध में वो क्या होता है, हार खा जाता है, और फिर दिल से कष्ट हो जाता है, और फिर चला जाता है। बाबा कितनी मतलब सारी चीजें पूरी, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। कमजोर संस्कार मतलब हम में कोई ऐसी आदत है जो हम छुपाते आ रहे हैं दूसरे से, और कोई अगर नोटिस भी करता तो उसी के ऊपर क्रोध करने लगते हैं, यानी खुद हम उसको नहीं पहचानते, आग बबूला हो जाते हैं। एक भाई रूम में इधरी पे, रात को अमृत वेला सोएगा लेकिन रात भर जागेगा, रात को 1 बजे तक उसको जब भी देखो तो मोबाइल में कुछ ना कुछ करता रहता है। बाबा कहता है कमी कमजोर नहीं देख, और वो बताता भी है, मतलब कि उसको बोला कि क्या करते हो मोबाइल में, तो बोले कुछ नहीं है, सही पुरुषार्थ के लिए कर रहा, मम्मा का अभ्यास कर रहा, सोते सोते बहानेबाजी, छुपाने की कोशिश कर रहा। मतलब छुपाते हैं तो वो युद्ध चलती है अंदर, स्पष्ट बता दो। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कमजोर आत्मा के सामने अपनी कमजोरी वर्णन किया तो हम तो डूबे सनम, साथ में उसको भी ले डूबेंगे। इसलिए जो मजबूत है, जो अचल है, उनको बताओ, क्योंकि ऐसा हुआ था कि हमें बहुत फिल्म देखने की आदत थी और एक आत्मा को हमने बताया कि ऐसा ऐसा है, ये परेशानी है, कैसे इससे निपटा जाए, तो वो खुद डूबा हुआ था उस चीज में, तो वो हमको कैसे निकाले, खुद तो डूबा है। तो पुरुषार्थ थी आत्माओं से, और देखा कि कुछ समय के बाद चला गया, वो छोटी सी बात के कारण चला गया। एक छोटी बहन थी, उसने कुछ बोल दिया, और वो बहुत पुराना था भाई, 20 साल से चलने वाला, और वो बहन 5-6 साल से चलने वाली, और बाबा ने तो टीचर का ओहदा दिया ही है, बहन चाहे कैसे भी वो टीचर है, उसका तो मानना पड़ा। तो अहंकार था, हम पुराने हैं, हम कैसे मान ले छोटी बहन की बात। तो टकराव हुआ संस्कारों में, और जाके उसने शादी कर ली। अब वो तो एक संस्कार दबा हुआ था ना, बार रीजन वो नहीं था, कोई रीजन कुछ और था, अपने संस्कारों का युद्ध चल रहा था अंदर ही अंदर। तो ये सारी चीजें और तो छिपा के करते हैं। आजकल माया तो बहुत विकराल है, पहले तो ऐसा था कि दूर थी, आजकल जेब में है। तो जब से जेब वाली माया आई ना मोबाइल, तब से ब्राह्मणों को खतरा बढ़ गया है ज्यादा। वास्तव में हम जब मोबाइल ब्राह्मणों वश में नहीं, पूरी दुनिया में घातक है, और जो बाबा बेकार कहता है ना, ये बहुत सूक्ष्म है। अब तो और दब गया है वो, जब से पर्सनल चीजें आई हैं, और जब से जियो ने अनलिमिटेड दिया है ना, अति वर्जते, अति जब किसी चीज की हो जाती है अति में, तो तब घातक होता है वो। और जो चीज हमको फ्री में मिलने लगे, उसका दुष्परिणाम बहुत घातक होते हैं। जो मेहनत से मिलता है ना, वो बहुत उसको संभाल के यूज करता है व्यक्ति, और जो फ्री में मिलता है वो बहुत अधिक यूज करता है। तो अगर समय मिलेगा तो वो अनुभव सुनाएंगे कि मोबाइल में कैसे लोग डूबे हुए हैं, जो हमारा पर्सनल है, लाखों मोबाइल हमने अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, इवन ब्राह्मणों के भी मोबाइल पकड़े हुए हैं। 80% ब्राह्मण अभी भी फंसा हुआ है, 80%। बड़ी गंभीर बीमारी है, वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकता। इवन बाबा जो मुरली में कहा, वो 100% सत्य महावाक्य हैं, जो 2 दिन पहले कहा कि फीमेल भी सिनेमा देखे बिना रहती नहीं है। ऐसी कई जगह है बीबी जो इनको नींद नहीं आती है जब तक वो सीरियल ना देख लें। सास बहू आए थे क्या करने और करते क्या है। अरे पुरुषार्थ में उन्नति होनी चाहिए, भले कुछ करो, पुरुषार्थ में दिखना भी तो चाहिए। रात भर सिनेमा देखा और अमृत वेला सोया तो क्या किया, क्या सीखा तुमने, यही सीखा कि सुबह सो जाओ। पुरुषार्थ में आग लगनी चाहिए। आग मतलब ऐसी, जैसे एक एरोप्लेन खड़ा था एयरपोर्ट में, उसने मिसाइल से पूछा कि तू इतना आसमान में कैसे उड़ता है, सीधा इतनी फास्ट कैसे उड़ता है। तो उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया उसको कि तू भी अपने पीछे आग लगा ले, तू भी उड़ने लगेगा। तो पुरुषार्थ के मार्ग में हमें स्वयं विद्रोह करना पड़ेगा, अंदर हमें विद्रोह चलना चाहिए कि हम क्या दुनिया में, ऐसा तो नहीं कि कोई ब्राह्मण साधारण रहा हो दुनिया में भी, वो दुनिया में भी कुछ रहा होगा। ये मत सोचो, बाबा ने कहा सिर्फ तुम्हें कोई 21 वर्ष की बादशाह नहीं, 50-60 वर्ष की बादशाह आज की मुस्लिम बाबा ने कहा। मिल्कियत के मालिक हो तुम, लिटरेचर रखो अपने पास। और हम अपने आप को साधारण समझना भी बहुत बड़ा हमारे ऊपर कलंक है, अगर अपने आप को साधारण समझ के चल रहे हो। ये भी खुद को खुद स्वयं श्रापित करना है। तुम विश्व की स्टेज में हो, मधुबन में जो है उसको बहुत ऊंची दृष्टि से देखा जाता है, चाहे वो कोई भी हो, छोटा से छोटा हो, बहुत लोग उससे अपेक्षाएं रखते हैं कि आप तो उधर पे हो। अब जो हमारी लौकिक सिस्टर, वो बहुत 25 वर्षों से समर्पित है, लेकिन जब हम इधर पे आए तो बहुत मतलब कभी फोन नहीं किया जब से हम इधर आए, कभी कोई हालचाल। लेकिन कल अचानक शाम को फोन आया, शायद जब से हम मधुबन आए तो पहली बार बात हुई। वो बोलती है कि तुम महान भूमि में हो। हमने बोला आप तो हमसे सीनियर हो, बड़े हो, और बहुत पुराने, हम तो अभी अभी इधर पहुंचे हैं, और जाना है रस क्या होता है, या आपने जो समर्पित जीवन का रस लिया है वो हमें इधर फील हो रहा है। बोले नहीं, बोले जो सेंटर में रहते हैं वो नदियां हैं, तुम सागर में हो। मतलब बहुत सारी चीजें उनने बताई कि वो तो ठीक है। तो हम एक है कि करने क्या आते हैं वो भूल जाते हैं, तो ये दूसरी, पहली बात थी बैलेंस, दूसरा क्या था कमजोरी, युद्ध चलती, तीसरा जो है वो प्रमुख है सबके साथ होता है, संस्कार में टक्कर, संस्कार जो पुराने हैं परिवर्तन नहीं होते उसमें टक्कर होती है। मतलब जहां बच्चा बनना उधर मालिक बनने की कोशिश करते हैं, जहां मालिक बनना उधर बच्चा बन। तो दूसरा, जब हमारे बाबा कहता है निमित्त आत्मा को तुम ये समझो कि बाबा का डायरेक्शन है, किसी अव्यक्त वाणी में बाबा ने बोला है कि अगर आपके ऊपर जो निमित्त आत्मा है वो आपसे कोई गलत काम भी करवाती है उसका जिम्मेवार बाबा है, रिस्पॉन्सिबल बाबा, तुमको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देना है। अगर वो कहता है कि सिर डालो तो डालो, करो, उसका रिस्पॉन्सिबल बाबा है, और तुमने आर्ग्यू किया तो क्या होगा। और एक बार जो क्रैक पड़ गया जीवन में, ना आपका योग लगेगा ना ज्ञान में उन्नति होगी, दुर्गति शुरू हो जाएगी। और इधर आने के बाद ज्ञान योग अपनी जो सेवा है उसके अलावा किसी चौथी चीज में रस लिया वो भी डूबने का कारण बन जाएगा। इसके अलावा कोई और चीज में रस नहीं लेना है। और जहां थे कि महान आत्माएं हैं वो चीज भूल जाते हैं, और बाबा याद, ये तीन कारण में बाबा एक चीज हमेशा याद दिलाता है कि तुम हनुमान हो। तो हनुमान के विषय में अगर गहराई से चिंतन किया जाए तो कितनी सारी चीजें हैं उसके जीवन में। हनुमान जिसने अपने मान नाम मान सान का हनन कर दिया हो वो हनुमान है। जब कहते हैं कि जब चारों सेनाओं को भेजा, चारों सेनाओं को राम ने भेजा मित्रता के बाद सुग्रीव की, चारों दिशा में गई, तो दक्षिण में जो सेना गई उसका नेतृत्व कर रहा था अंगद, अंगद लीडर था, उसमें हनुमान था, जामुन थे और दो ये तीन थी। जब वो चले गए, जब पूरा ढूंढते ढूंढते लास्ट में समुद्र आ गया, अब समुद्र के पार कैसे जाएं, ये तो कहते हैं कि स्वयोजन दूरी का समुद्र था वो, स्वयोजन। और वो बोले कि अब इसके आगे कहाँ जाना है, लौट चलो। मतलब सब लोगों ने प्लान बनाया कि अब इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, कहाँ सीता मिलेगी, लौट चलो, प्रभु राम को बता देते हैं कि ढूंढ लिए नहीं मिले। तो अंगद जो लीडर होता है, अंगद बोले इससे अच्छा प्रभु के पास में ये समाचार लेके जाऊं कि मुझे, मैं हार गया, आपका जो उद्देश्य था उस उद्देश्य में फेल हो गया, इससे अच्छा है मैं इधर ही अनशन करके अपने प्राण दान दे दूं। और वो बैठ जाता है, बोले हम मर जाएंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे, मृत्यु को गले लगा लेंगे लेकिन वापस नहीं लौटेंगे। तब सारे लोगों को, जो सेना नायक ही जब बैठ गया, और वो कह रहा है कि आप लोग सब चले जाओ, हम, हमारे ऊपर दायित्व था, आपके ऊपर कोई भार नहीं है, आप लोग लौट जाओ। तो उसकी, जब उसका राजा इतना दृढ़ निश्चय वाला है तो उसकी प्रजा कैसी होगी। जब लीडर ही है, कमांडर ही शक्तिशाली है, तो उसकी जो साथ में सहयोगी हैं वो कितने उमंग उत्साह में, तो वो भी बैठ जाते हैं, बोले हम भी इधर ही हैं। जब उधर एक गिद्ध बैठा रहता है जटायु को भाई, वो हंसता है कि चलो एक एक करके मरना, क्योंकि मेरे पंख जल गए हैं, मैं खाऊंगा आप लोगों को, मैं तो शिकार करने कहीं जा नहीं सकता। तब उसको पता चलता है कि वो कहते हैं कि चलो एक ऋण तो चुकाने के काम आए हम श्री राम के। ऋण कौन सा था, सीता को बचाने में जटायु ने अपना प्राण दे दिया, वो ऋण चुक जाएगा तुम खा लोगे तो, गिद्धराज की जटायु का ऋण है हमारे ऊपर। तब उसको याद आता है जटायु तो मेरा भाई था, वो क्या हुआ उसके साथ। बोले श्री राम की भार्या जो थी सीता, उसको रावण ले गया और वो कहानी पूरी सुनाई। तब उस कहा कि गिद्धों के पास एक ताकत होती है, और जब मेरे भाई को उसने पिता के समान अग्नि दी राम ने, तो मैं भी उसकी कुछ मदद कर देता हूं। गिद्ध की बोले दृष्टि बहुत अपार होती है, वो देख सकता है समुद्र के उस पार क्या है। तो उसने कहा कि सीता को ढूंढो, सीता को लेके गया था रावण, तो बोले उस एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है वो। बस उनको फिर जामन याद दिलाता है कि मार्ग मिल जाने पर लक्ष्य सिद्ध ना हो या हो नहीं सकता। ऐसे ही बाबा हमको मार्ग दे दिया है, मार्ग बता दिया उसने, लक्ष्य हमको बता दिया है, मार्ग ना मिले ये हो नहीं सकता। सिर्फ हमको क्या चाहिए, दृढ़ निश्चय। जैसे उनको, उनके पास दृढ़ निश्चय था कि बैठ जाना है, बिल्कुल यही है, इधर उधर नहीं कूदना। अगर अमिताभ बच्चन 4 साल के बाद बोलता फिल्म में कोई फायदा नहीं, जाके या फिर हम रेडियो में नौकरी करता हूं, क्या सक्सेस होता। सचिन तेंदुलकर अगर वो क्रिकेट खेलने के बजाय बोला गिटार बजा लेता हूं अब उधर सफल हो जाऊं, हो गया। ये एक चीज में जब जगदीश भाई कहते हैं उखरी में सर डाल दिया तो मूसर से नहीं घबराने का, और जब एक ही जगह खोद रहे हो तो कुआं ऐसा खोदो कि पानी वहीं से निकल आए, बिल्कुल दूसरे। और अगर इस जीवन में हमने मार्ग बहुत सारे बना के रखे हैं ऑप्शन, कहीं नहीं पहुंचोगे ये निश्चित है। मार्ग एक ही होना चाहिए। एक व्यक्ति जाता है रेलवे स्टेशन और कहता है कि टिकट दे दो, वो पूछता है कि भाई कहां जाना है, बोले नहीं पता मेरे को, तो वो कहीं नहीं पहुंच पाएगा। गोल क्या है, इधर आने के बाद हम लक्ष्य ही भूल जाते हैं। वो ड्रेस पहन ली डेली, वही चल रहा, सेवा कर रहा है, अरे आया किस लिए था तू, आउटर साइड तूने प्रोग्रेस की है, सिल्वर गोल्डन और लक्ष्मी नारायण, आउटर साइड प्रोग्रेस है, इनसाइड क्या किया तूने, अंदर क्या प्रोग्रेस की। इधर 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, अरे धिक्कार है जो बता रहा तू कि 50 साल हो गए और जहां के तहां है अभी तक, धिक्कार है तेरे ऊपर। जो प्रोग्रेस करनी चाहिए थी, समय की प्रोग्रेस नहीं करनी कि इधर में इतने साल, अरे तू खुद तो आगे नहीं बढ़ा और दूसरे का भी सीट रोक के रखा है, ये भ्रम है तेरा कि तू संभाले हुए है, ये तू दूसरे की सीट रोके हुए है, ना खुद बढ़ रहा है ना दूसरे को बढ़ने दे रहा, दरवाजे में अड़ंगा है तू। ये कोई वो नहीं है, ये अपनी रियलाइज करने की बात है, किसी को वो करने की बात नहीं, किसी को कहने की वो नहीं है कि किसी को हम कह के और वो करें, ये स्वयं में कि हम आए किस लिए थे और करते क्या है। और बाबा ने कहा कि सेवा ही जीवन है। कई लोग कहते हैं ज्ञान योग बहुत करते, सेवा भी तो करनी चाहिए, अरे जो ज्ञानी और योगी होगा उसकी सेवा में वो कभी लेट लतीफ नहीं होगा, एक्यूरेट होगा उस वास्तव में। जो ज्ञानी और योगी होगा उसके जैसे सेवाधारी कोई नहीं होगा, उसको कोई देखे चाहे ना देखे, उसको ये याद रहेगा कि ऊपर वाला देख रहा है, चाहे डिपार्टमेंट इंचार्ज हो चाहे ना हो, अपने कर्तव्य में निष्ठावान होगा, ईमानदार होगा। तीन कारण जो ये थे, तीन निवारण बाबा ने बहुत सूक्ष्म बताए हैं। पहला निवारण है, पहले कारण का, सेवा में व्यस्त स्वयं और अपनी चेकिंग में अटेंशन रखना, स्वयं की और सेवा में अटेंशन रखना, चेकिंग में कि हम जो कर रहे हैं सेवा में जो हैं वो प्राप्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो इसलिए हम आए हैं उसमें अटेंशन है, क्योंकि युद्ध अचानक होता है और जो आर्मी में सोल्डर होते हैं वो एक्टिव होते हैं, हमेशा अलर्ट, ड्रिल उनकी चलती रहती है, कभी भी शत्रुघात कर सकता है, निरंतर वो करते रहते हैं प्रयास, तो वो अपना पुरुषार्थ करते रहते हैं। तो पहला है चेकिंग, अटेंशन, अटेंशन रखना है। फिर दूसरा बाबा ने दूसरे कारण का निवारण बताया कि कोई भी कमजोर संस्कार है बच्चे, क्लियर अपने बाबा से और निमित्तात्मा से बता दो, स्पष्ट सुना दो उसको, जो भी था जीवन में आपकी घटना है, जो आपके संस्कार है, स्पष्ट बता दो। सच बोलने में कभी भी कुछ नहीं होता है, चाहे कितना भी बड़ा सच ना बोला जाए, सच बोलने से भगवान आपको जो ताकत देगा वो दुनिया कोई चीजें नहीं देती, और छुपाने से ना आप स्वयं प्रोग्रेस कर पाओगे ना दूसरे की उन्नति, दूसरे को भी बाधा में रहोगे। जब हम सच सुना देते ना अंदर से खाली हो जाता है, हल्का हो जाता है और निडर रहते हो आप, दूसरे अपने उससे क्लियर रहोगे ना, निडर रहोगे आप। कई बार ऐसा होता है कि हम दिन भर कभी कभी भूल जाते कंप्यूटर बंद करना या कुछ करना, तो अंदर से लगता है कि जो भी है लेट हो गए कभी डिपार्टमेंट पहुंचने में, तो बता दिया भाई साहब को, तो वो निश्चिंत रहते हैं, वो हमारे जो ऊपर वाले लोग हैं वो निश्चिंत रहते हैं। कहीं किसी ने बुलाया सेवा के लिए तो बता दिया सच्चाई से, ये ऐसी ऐसी बात है, बस क्लियर। आपको कभी बोझ ही महसूस नहीं होगा और आपको नींद अच्छी आएगी, रिलैक्सेशन होगा और आपको ऊपर जो निमित्त आत्मा है वो ट्रस्ट रहेगी बिल्कुल, उस कभी संशय नहीं कर सकते आप, उसको इतना निश्चय होगा कि हमारे पीठ पीछे कुछ नहीं मुंह करेगा। टकराव का मुख्य कारण यही होता है, भरोसे में कमी, शंका। हर चीज की दवा है दुनिया में शंका की नहीं है। एक बार जो शक बैठ गया, बाबा ने किसी मूल्य में कहा कि एक बार जो शक बैठ गया उसकी दवा किसी डॉक्टर के पास नहीं मिलेगी, और वे बीमारी बहुत, इस बीमारी के जन्म से बहुत गहरे हैं। किसी तीसरे, कभी कभी ऐसा होता है कि अपने पीठ पीछे कोई दूसरी तीसरी आत्मा बताती है कि ये करता है, और उनके पीठ पीछे अपन को बताएंगे कि ऐसे, मतलब खौफनाक ब्राह्मण, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, बाबा कहता ना खौफनाक ब्राह्मण, तो ये अपने पीछे सीनियर को कुछ और बताएंगे, और सीनियर नहीं रहेगा तो सीनियर की चुगली जूनियर से करेंगे। इधर ऐसा भाई था पहले, ऐसा ऐसा था, वो चला गया, अरे तुम किसी का उमंग उत्साह नहीं बढ़ा सकते तो गिराओ नहीं भाई, जो कमजोर होता तो वो मर ही जाता है, कई कमजोर आत्माएं होती तो भाग जाती हैं दूसरे का सुन के। अरे मैं, अगर तू भगवान को देख के आया तो उसको देख के चलना, इंसान को देख के क्यों भागता है, इंसान को फॉलो करके आया, सुख सुविधाओं के चक्कर में आया, लुटेगा और ऐसा लुटेगा कि दोबारा उठ नहीं सकेगा। पर्स के पीछे इधर भागा तो करोड़ों की मिल्कियत का मालिक नहीं बन पाएगा। कहानी कहीं ना कहीं होती है, चलो ठीक है। दुनिया में जितने लोग हैं, बाबा कहता है शास्त्रों में नमक मिसल सत्य है, उस नमक मिसल में लोग सक्सेस हुए हैं। आप गीता में देखें तो, हम कॉलेज में जब थे तो ट्रेनिंग होती थी, मतलब 5,000 रुपये एक घंटे की ट्रेनिंग का लेते थे, और वो किस पे गीता और उस पे भागवत पे समझा रहे हैं और लोग उमंग उत्साह में आ रहे हैं, और तुमको उधर भगवान का मिल्कियत मतलब जो है एक एक वर्जन लाखों करोड़ों का है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, इसलिए वैल्यू नहीं है। दुनिया भी लोगों को अगर इतना क्लियर कट और सीधा सिंपल समझाया जाए, बाबा ने ये बात बोली है कि सीधा उनको नहीं समझाते इसलिए वो भागते हैं। कुमार आया, कोई कुमारी आई स्टार्टिंग में, उसको बताओ कि परिस्थितियां विकराल आएंगी इधर पर, उसको क्या है लक्ष्मी नारायण का फोटो दिखा दे, लच्छे है, बस वो फूल के गुप्पा हो गए, और जब परिस्थितियां आना शुरू हुई फिर देखो, पहले ही बता दो ये लक्ष्य बहुत ऊंचा है, लक्षण भी ऊंचे चाहिए और परिस्थिति भी ऊंची है। बाबा ने बहुत गहरी बात बोली कि ये बता दो, स्पष्ट बताओ उनको, समझाओ, लेकिन तुमको हार नहीं माननी है, अब खुद ही अंदर से टूटा है। बहुत सारे ऐसे कुमार सेवा के क्षेत्र में हैं, हम जहां पर रुके हैं उधर सेवादारी, तो बातें तो सुनने मिलती रहती हैं, भले चर्चा ना करो आती रहती हैं, खबर कबड़ी लाल लगे रहते हैं न्यूज रिपोर्टिंग करने, अपन को न्यूज देखने की जरूरत नहीं पड़ती, सारी न्यूज मिलती है। तो कहेंगे कि इधर पर ना जो बहुत पुराने लोग हैं वो खुद कहते हैं कि बाहर जाके आओ, और ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। किस उम्मीद से, जिसका उमंग उत्साह कम रहेगा ना वो दूसरे का भी कर देगा, वो बाद में यही आर्ग्यू करेगा कि हम इतने दिन से चल रहे हैं, हमको पता है सारी चीजें इधर की, किसी का भाग्य रोक देना ये भी बहुत बड़ा पाप का भागीदारी बनना है। भले हम कहते हैं कि वो 10 साल चल पाए, 5 साल चल पाए, भाई उतने समय तो वो उमंग उत्साह से भाग्य बन सकता है ना, और हो सकता है क्या पता दूसरों की सांसों में ऑक्सीजन मिल जाए उसको चल पड़े। कल बाबा ने बोला था दूसरे को ऑक्सीजन दे दो चल पड़े वो भी, सांस रुकी हुई, और वैसे भी जो हॉस्पिटल में ICU में ECG मशीन होती है वो पल्स बताती, वो सीधी लाइन चल रही है तो व्यक्ति डेड है, और ऐसा आड़ा टेढ़ा है तो व्यक्ति जिंदा है। जब परिस्थिति है तो समझो ब्राह्मण जिंदा है, वो पुरुषार्थ में कुछ ना कुछ कर रहा है, तब तो परिस्थिति आ रही है, और जिसके जीवन में कुछ ना अमृत वेला उठना ना मुरली करनी उसके क्या परिस्थिति आएगी, सीधी लाइन है बिल्कुल, एक रस अवस्था। पुरुषार्थ में एक रस अवस्था नहीं चाहिए, पुरुषार्थ में एक रस अवस्था नहीं चाहिए, पुरुषार्थ में न्यूनेस चाहिए, पुरुषार्थ में ब्रेन वेव तोड़ना है, 1% फार्मूला अपनाना है, एक बुक है 1% फार्मूला, हर दिन अमृत वेले में 1 मिनट बढ़ाओ, तुम घटाओ नहीं बढ़ाओ, 10 दिन में बहुत प्रोग्रेस हुआ, 10 मिनट बढ़ जाएंगे। अपन क्या करते हैं, आज 4 बजे उठा, कल 2 बजे उठ गया, लुट जाएगा, दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो 4 बजे उठता है ना, 3:59 में उठ, चलने नहीं उठने का, और कंसिस्टेंसी बहुत चाहिए, रेगुलरता बिल्कुल निरंतर चाहिए, विघ्न बाधा नहीं चाहिए, बीच में एक दिन उठा एक दिन नहीं उठा। बाबा कितना सिखाता है अपने अनुभव से कि सजा दो, कुछ गलती हो जाए तुरंत साइड में लो अपने आप को और दो चार खींच के, नहीं ये पनिशमेंट मेथड दुनिया में बहुत यूज करते हैं लोग सफल होने के लिए, दुनिया में लोग पनिशमेंट मेथड बहुत यूज करते हैं कि एक रबर बैंड मेथड होती है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं रबर बैंड मेथड अपनाते हैं कि जब उनसे कोई गलती हो जाती है तो रबड़ खींच के मारते हैं अपने आप को, याद दिलाते हैं कि तू बिजनेसमैन है, तेरे क्या करना है, मतलब कुछ ना कुछ पनिशमेंट अपने पास रखते हैं वो, और अपना गोल ना बिल्कुल निर्धारित करके रखते हैं, जो भी महान बना है वो अपने लक्ष्य को देख के ही बना है। और बाबा कहता है ना कि जहां ये और इस मार्ग में चल रही हो तो रास्ता पूरा नहीं दिखता, अगर इधर से हमको दिल्ली जाना तो पूरा रास्ता आपको दिखता है क्या, इधर से आपको दिखेगा सीधे नीचे तक जाओगे सिरोही तक, उधर पहुंचोगे उधर के बाद दूसरा है दूसरा है, लेकिन तुमको चलना तो उधर से, इधर इसे सोच लो कि हमें रास्ते ही नहीं पता तो पहुंच पाओगे, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते, लेकिन उनका क्या होगा जो डर के मारे घर से ही न निकले, निकलना पड़ेगा, मंजिल मिलेगी आपको लेकिन निकलना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा, घर बैठे आप सोचो भयंकर तीव्र पुरुषार्थ करना है, बैठे ही रहोगे बस मोबाइल ही में देखोगे यूट्यूब में, कर कुछ ना पाओगे, करना है तो कूदना पड़ेगा, और एक ही मार्ग चूज करना है, इसके अलावा दूसरा नहीं कि दुनिया का लड्डू भी लूट लूं इधर भी आके लूट लूं, दो लड्डू नहीं ले सकते, बाबा ने कहा ना दो नाव में सफर करोगे तो क्या होगा, ना धर के ना उधर के, ना किनारा मिलेगा ना ना वो कहते ना ना माया मिली ना मिले राम। तो एक दूसरा था, तीसरा बाबा ने बताया कि क्लियर नहीं रहते हैं, टू मच सेवा रहती है जास्ती, टू मच सेवा है तो बच्चे बता दो अपने सीनियर को और अपनी उन्नति का कुछ प्लान बना के चलो, सूक्ष्म गुप्त रीति से सेवा जीवन भर रहेगी, अपनी उन्नति कहाँ हो, ऐसी कंपनी ढूंढनी, ऐसे कंपनी ऐसे लोग ढूंढने जो प्रसाद के प्रति जागृत है, क्योंकि संगठन में बल होता है, और हमारे सलाहकार कौन है वो बहुत महत्व रखता है, सलाहकार हमने किसको सलाहकार बनाया, कहीं पुरुषार्थहीन व्यक्ति को तो सलाहकार नहीं बनाया है, पुरुषार्थ में उन्नति वालों को सलाहकार बनाना, क्योंकि एक दुर्योधन का भी सलाहकार था शकुनी, और एक कैकई की भी सलाहकार थी मंत्रा, और एक कृष्ण का भी कृष्ण अर्जुन का सलाहकार था, हमारा सलाहकार कौन है, भगवान को सलाहकार बनाना है, और जिसके साथ भगवान है चाहे वो 5 रहें और वो 1000 रहें अक्षौणी सेना, किसकी जीत हुई, सलाहकार कौन है, रावण ने तो सलाहकार ही की नहीं मानी तो उसका तो सर्वनाश हो गया, सारे धड़ अलग हो गए, तो उसका भी अहंकार नहीं कि हम तो बहुत पुरुषार्थ हैं गुप्त में कर लेंगे, संगठन एक बल होता है, अकेला व्यक्ति जब तक उस पर एनर्जी है अंदर तब तक दौड़ पाएगा, लेकिन संगठन वाला एनर्जी ट्रांसपेरेंट करता है, संगठन में एक बल होता है, और जब मजबूत हो जाता है व्यक्ति अपने पैरों में खड़ा हो जाता है, जब पैर में फ्रैक्चर हो जाता है तो कुछ समय तक ट्रीटमेंट तो लेना पड़ता है ना, सहारा वैसा की का लेके चलना पड़ता है ना, जब चलने लगते हैं तो दौड़ने भी लगते हैं व्यक्ति छोड़ देता है, सहारे के भरोसे भी नहीं चलने दे रहना है, बहुत सारी सूक्ष्म बातें ये हैं कि संगठन कहाँ जरूरी है, कहाँ संगठन में फंसना नहीं, अतिवर्जित है किसी आत्मा ही में फंस जाना, भाई भाई में फंस गया, बहन बहन में फंस गई, वो तो बात की बात है कि बहन भाई में फंसे वो अलग है, भाई भाई में भी फंस जाते हैं, पुरुषार्थी पुरुषार्थ ही में फंसे रह गए, अरे वो बाबा का ज्ञान सुना रहा है तुम उसी में लटक गए, उसी को समझ लिया बाबा यही है, यही से हमको प्राप्ति होगा, भाई से भाई को प्राप्ति नहीं होती, इसलिए बाबा कहते फॉलो फादर, बीच बीच में टेंशन दिलाता है कहीं फंस तो नहीं गए तुम, किसी में नहीं फंसना है। वो निमित्र है और उसको भेजा किसने है, भले तुम्हारा पुरुषार्थ किसी आत्मा के थ्रू चला लेकिन भेजने वाला वो है, उसको नहीं भूलने का। उसको पता है ना कि तुम किस आत्मा से सुधरोगे, कैसी बातें सुनोगे तब सुधरोगे, उसको पता है ना। ज्ञान तो उसी का है। आप देख लो यूट्यूब में बाबा कितनी अव्यक्त वाणियां डाली हैं, उसको कोई नहीं देखता। उसका जो छांच है लोगों की क्लासेस है, उसको बहुत सारे लाखों लोगों ने देखा, लेकिन जो भगवान की वाणी है वो किसी की खोपड़ी में नहीं घुसी। हजम करने के लिए भी चाहिए स्टैमिना, भगवान की बात है हजम करने का भी स्टैमिना चाहिए। अब तुम छाछ ही तुमको पसंद है तो पीते रहो छाछ, मुरली जो है दूध है, कोई उसका छाछ बनाता है, कोई उसका पनीर बनाता है, कोई रबड़ी बनाता है, कोई मावा बनाता है, लेकिन भाई साहब मावा बनाने में जलना पड़ेगा, कढ़ाई में जलना पड़ेगा, ओंटना पड़ेगा उसको, तब घी निकलता है रगड़ा खा के। एक बात है इस प्रोसेस में कि दो हो गए, लास्ट बचा है, तो हार के डर से कोशिश न करने से अच्छा है, हार के डर से कोशिश ना करने से अच्छा जीत की कोशिश में मर जाना। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जितने जिसने रातों को जंग जीती, सुबह का सूरज बन के वही चमकता है। बाबा कई बार कहता है, कल की मुरली में एक सूक्ष्म बात बोली बाबा ने, एक वो जो नाम के लिए करेगा ना उसका नाम होगा लेकिन एक जन्म के लिए, और जो गुप्त करेगा उसको 2500 वर्ष के लिए मिलेगा और वो इस जन्म में भी सफल होएगा, छुप नहीं सकता, परछाई की तरह उसके पीछे सफलता आएगी। और ये जो ब्राह्मण जीवन है वास्तव में जो हमें कई जन्मों का लालच है वो भ्रम है मात्र। जो कई जन्मों जो बाबा कहते हैं ना कि स्वर्ग में वास्ताई मिलेगी, स्वर्ग में जी मिलेगा फलाना दिमाग का, ये भ्रम मात्र है, डायमंड योग यही है। क्योंकि पुरुषार्थी जीवन इसलिए महान है क्योंकि, एक और स्टोरी सुना देते दो मिनट में, जब एक व्यक्ति मकान लेने की सोचता है, बड़ा किराए के मकान में रह रहा है, वो बड़ा मकान लेना चाहता है, उसके लिए वो रात दिन मेहनत करता है, 10 साल तक मेहनत किया उसने एक 10 लाख कमाने के लिए, मकान लेने के लिए। और जब वो मकान लेगी ना तो उसकी खुशी 10 दिन तक चलती है, लेकिन जो 10 साल उसने एफर्ट करा तो वो 10 साल खुश रहता है, 10 साल वो मंगोस्ताय में काम करता है। जैसा ही वो चीज हासिल हो जाती है ना उसका रस खत्म हो जाता है। सबको अनुभव होगा इस चीज का कि इस ज्ञान मार्ग में हमें बहुत बड़ी से बड़ी चीजें मिली हैं आसानी से, लेकिन कुछ समय तक रस चला है उसका। इसलिए बाबा कहता है किसी भी चीज में डूबे ना आंख, अगर इस मार्ग में किसी भी चीज में डूबा गया। और पुरुषार्थी जीवन में ही मजा है, अमृत वेले उठो आप, उठने में ही मजा है, नशा है ये, ऐसा नशा है, मुरली पढ़ लो आप ऐसा नशा हो जाएगा आपको कि दुनिया की कोई मिल्कियत ऐसी कोई पढ़ाई। मैं इतने साल से मूर्ख था, मूढ़मती, बावन का भुट्टू थे तुम वो। हाँ, ज्ञान सुनना बस नहीं, स्वरूप का बावन बोला, स्वरूप उसका नशा उसको अलग ही रहेगा। तो ये लास्ट पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट में बाबा ने कहा कि संस्कार में जो टकराव होता है उसमें तुमको चेकिंग करनी है, संस्कार की अपनी चेकिंग करनी है सूक्ष्म रूप से कि ये संस्कार मेरा है और उसको बदलना है। संस्कार बहुत जन्म से ऐसे अंदर हैं, हमें लगता है कि ये तो हमारे पास, हमारे अंदर ये तो खत्म हो गया, लेकिन वो उबाल खाएगा। जैसे ही आप ज्ञान योग में आगे बढ़ेंगे, तपाएंगे अपने आप को, जैसे वो खोलता ना दूध खोलेगा, ऊपर उपनाएगा भी, कढ़ाई के बाहर भी गिरेगा, जलेगा, तो ऐसा ही है। जन्म से जैसे हमारे विकार हैं वो उथल खाएंगे, हमें लगेगा कि भ्रम रहेगा कि ये तो हम छोड़ चुके थे, फिर आ गया, कई बार आएगा, क्योंकि लास्ट बहुत काल का तीव्र पुरुषार्थ चाहिए, बहुत काल का अभ्यास का तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। ऐसा नहीं कि कई सोचते हैं लास्ट में बन जाएंगे, लास्ट में डूब जाओगे। तो ये सारी बहुत सारी बातें तो बहुत सारी हैं, तो वो हनुमान के जैसा है। हनुमान ने कभी, जब सीता के पास पहुंचा हनुमान, तो उसने रास्ते में किस किस को, पहले पहाड़ आया, पहाड़ आया तो पहाड़ ने बोला कि मैं ऋणी हूं तुम्हारा, ऋणी हूं। तो पहाड़ बोला कि आप विश्राम कर लो। वो हनुमान क्या कहता है, सेवक को विश्राम का अवकाश नहीं है, जब तक मैं सीता को न ढूंढ लूँ विश्राम नहीं करूँगा। तुम ही वो हनुमान हो, बाबा कहता है। और हम सोए पड़े हैं अमृत वेला, हमारा कर्तव्य है जब तक दुनिया में जितनी कोनों कोने में सीताएं नहीं छुपी हैं उनको ना ढूंढ लें, जब तक सोना नहीं है, सोना नहीं है, चाहे कुछ हो जाए, आग लगी रहे, आग लगी रहे, और ग्रेविटी से बाहर ले जाना है अपने आप को, ग्रेविटी से बिल्कुल बाहर। और ग्रेविटी से बाहर जाने में ताकत लगती है, पर ग्रेविटी के बाहर जब जाता है व्यक्ति तो उसमें ताकत नहीं है, पर वो उड़ने लगता है। तो ग्रेविटी से पोर्स, और जब जब एक मिसाइल ऊपर जाता है ना, आधा हिस्सा अपना नीचे छोड़ जाता है, हल्का होता है, और ऊपर जब ग्रेविटी से ऊपर जाता है तो थोड़ा सा हिस्सा और उससे अलग हो जाता है। ऐसे ही हमको हल्के होते जाना है। संबंधों में इतनी बुद्धि तो नहीं फंसी कि दिन रात फोन में लगे हैं, दिन रात अपने संबंधी हो। बाबा कहते हैं इसका ताला खोल दो, क्या मैं इसलिए आया हूं क्या, इसका उसका ताला खोल लें, मैं आया हूं सिर्फ पतित से पावन बनाने, इसके अलावा और कोई भगवान का कर्तव्य नहीं है। वो भ्रम है कि थोड़ा सा कुछ प्राप्ति हो गई तो बहुत उमंग उत्साह में आ गए, अरे बाबा ने दिया, बाबा ने दिया, अरे मूर्ख तेरे कर्म ने दिया है, कर्म का फल है वो। और अगर आज तूने अच्छे कर्म नहीं किए, बासी खा रहा, अगर आज तूने नहीं किया तो कल भूखा मर जाएगा। बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़े टेस्ट आने वाले हैं, समय वही चल रहा है, बड़े विघ्न, क्योंकि अंतिम समय जो जब करीबन 4 साल हम टेलीकॉम में थे, अंत समय ऐसा आएगा कि अकाउंट ना सेकंड में खाली हो जाएंगे, सारे हैकर बैठे हुए हैं, वो एक सेकंड में खाली करेंगे सारे लोगों के अकाउंट, एक सेकंड में, क्योंकि इतनी अथॉरिटी उनके पास हो गई है, सारी चीजें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल अकाउंट मोबाइल से लिंक है, एक मोबाइल नंबर रिप्लेस करने में कुछ नहीं लगता, 10 मिनट लगते हैं, आपका नंबर 10 मिनट में रिप्लेस हो जाएगा। और रिप्लेस हुआ, जितना डिजिटल हो रहा उतना फास्ट विनाश की तैयारी है, जितना डिजिटल हो रहा उतना, एक समय था आज से 10 साल पीछे जाओ तो 10 लाख पैसे निकलवाने के लिए 10 महीने रगड़ा खाना पड़ता था, आज करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन एक सेकेंड में हो जाता है, ना बैंक जाना है ना कहीं जाना है, इंटरनेट, और इंटरनेट डप हो जाएगा। आज जो करना है, बाबा ने कहा ना कि किनकी राजा खाए और किनकी राय दबी रूर में, अगर इस समय सफल नहीं किया, अब यज्ञ को जरूरत है, अब यज्ञ में सफल करने का है, जो अपना एक्स्ट्रा रखे ना वो रखा रह जाएगा, गारंटी इस बात की कि वो सड़ जाएगा धरे धरे, और खुद भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा व्यक्ति, खुद भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो परीक्षा आएंगी शायद वो आएगी, अगर बाढ़ भूकंप आया तो सबसे पहले इंटरनेट जाएगा, क्योंकि वो समुद्र के रास्ते से आया है इंटरनेट लाइन, बाढ़ भूकंप आया और रिपेयरिंग कुछ भी नहीं हो पाई, और इंटरनेट गया तो पूरा विनाश समझो हुआ पड़ा है, समुद्र से लाइन आती है, जो भी विनाश हुआ तो गया। तो ये लास्ट था, बातें तो बहुत सारी हैं, वैसे अनुभव शायद बाबा ने बहुत सारे उधर उस दुनिया में करा दिए जो बहुत जरूरी थे, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सपोर्ट मिलने का मतलब वो हुआ। पहले लगता था कि बाबा ये सारी चीजें क्यों अनुभव करा रहा है, हम क्या करेंगे, आज तक तो हमको बोलने का अनुभव नहीं बाबा, हम तो छोटी मोटी कोई हमको सेवा दे दो वो कर लेंगे। बहन जी बहुत बार पीछे लगी कि सुख दो, थोड़ा कुछ बोलना सीखो। कई बार ऐसा हुआ कि कई बार भूखा रहना पड़ा कि दीदी बोल रही है तो आज्ञा का फरमान मानना चाहिए, लेकिन कभी अंदर से आवाज नहीं निकली, शायद वो हनुमान ये सोचता कि मैंने लंका जलाई, तो ये भ्रम था उसका। सीता ने प्रार्थना की, हे अग्निदेव हनुमान के लिए शीतल हो जाना। आज इधर पे हम बोल पा रहे तो शायद आप लोगों का वो है उसमें सहयोग, शायद आप संगठन का जो बल है वो है, अगर मैं सोचूं मैं बोल पा रहा हूं तो ये मेरा भ्रम है, भ्रम है वो। तो एक ऐसा जो व्यक्ति कभी अकेले दो लोगों के साथ बात नहीं कर पाए, आज बोल पा रहे तो वो मेहरबानी है शायद किसकी है, वो तो वो ही जानता है। तो ये सारी बातें हैं, बातें तो बहुत होती हैं, तो अच्छा ओम ओम शांति। Thank you.
माया से कभी भी डरना नहीं, रुकना नहीं तो झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं, बेहद करना गुणों का तुम दान, एक दिन होगी कर्मों की पहचान, मिलेगा तुझको दिव्य वरदान हो, मिलेगा तुझको दिव्य वरदान, रुकना नहीं तू झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना